रुपये बताओ। सभी अपने को सदा कुटुंब में कोई और कुल में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कुटुंब में कोई जगाया हुआ है और कोई है या भी हो तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना कि जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता और दूसरे तरफ निर्माणता, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे, जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देगा, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है कि महान सबको, निर्माण सबको सुख देगा। मान देना अर्थात सुख देना, जहां भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान है, जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते दुख लेते, चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है। जिसके पास होगा ही दुख वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख देना और सुख लेना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दूसरे तो दुख दे रहे हैं पर हमें डिसाइड करना है, निर्णय हमें करना है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा है ना। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ के किनारा कर लिया, या अभी तक एक पाव दुखधाम में है एक पाव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पाव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो ना दुख देना है और ना दुख लेना है। क्या सुना, बाबा ने कहा आप सब कौन आत्माएं हो, सदा अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इस संसार की हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। ये जो गायन है वो किसका है, हमारा है। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी उतना ही मान की कामना से रहित निर्माण, उसे मान की इच्छा नहीं है। तो जितनी मान की इच्छा जिसमें ज्यादा तीव्र उतना ही वो महान, उसमें उतनी महानता कम। उदाहरण दिया वृक्ष का, फलों से लदा हुआ वृक्ष क्या होता है, झुक जाता है। हारमनी शब्द का अर्थ ही क्या है, हार मान ती, मान तो रहता ही। तो ये जो निर्माणता है वही सेवा करता है, जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा, और वो अपने अभिमान में खड़ा रहेगा तो ना तो छाया देगा, ना तो फल, ना तो फूल, कोई तूफान उसको झुका के गिरा देगा, धराशाही कर देगा। परंतु जो लदा हुआ है वो न जाने कितने राहगीरों को सुख देता है, न जाने कितने भूखों की भूख मिटाता है, प्यासों की प्यास मिटाता है। तो एक तरफ महानता और दूसरी तरफ निर्माण, और जो निर्माण रहता है वह सर्वदारा मान पाता है। जो हम सब महान आत्माएं हैं, महानता का आधार निर्माणता, और जो निर्माणता है उसे मान स्वतः ही मिलता है, और जिसे मान की कामना है उसे नहीं मिलता। दूसरों से दुख सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, जो चाहते हो उसके विपरीत मिलता है। सफलता चाहता है आदमी तो उसे विफलता मिलती है, मान चाहता है तो अपमान मिलता है, सुख चाहता है तो दुख मिलता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे तो और दूर भागते हैं। अहंकारी व्यक्ति से सब लोग दूर भागते हैं, डर रहता है उसका। तो महान और निर्माण, छाया देता है, छाया छाया देता है। उस पेड़ पे अगर कोई चढ़ गया और गिर गया तो कितनी बुरी हालत होती है। काम विकार से गिरने के लिए वो उदाहरण दिया जाता है, जो काम से गिरता है वो जैसे नारियल का बड़ा पेड़ है, सीधा गिरता है नीचे। या नहीं भगवान कहते हैं, तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है। निर्माण सबको एक तो मान देगा, या उसमें मान की कामना नहीं होगी और सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा, क्योंकि अंदर भावनाएं बहुत श्रेष्ठ है, मान की कामनाएं नहीं, सबको मान देने की भावना है। इससे चेक करो कि कितने महान है। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करें। ऐसे ही कभी दुख भी मिल जाता है, निर्माण तक हम तो सुख की सजा नहीं दे सकेंगे। दूसरों को सुख भी हो देता है जो जिसके अपने अंदर मान की कामना नहीं है, या फिर जो सुखों से भरा हुआ है वही दूसरों को सुख देता है। सदा तो सदा सुख देते हैं, सुख लेते हो। बाबा ने आज कहा है तुम्हारे अंदर खुशी की ताली निरंतर बजनी चाहिए, सदा सुख खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। वहां आग है, इधर शीतलता है, उधर साइंस, इधर साइलेंस। साइंस की हार होगी साइलेंस से, वहां शोरगुल, इधर एकांत। क्या है गुलगुल? यहाँ एकांत, एकांत में योग में एकांत की जरूरत है। आज की मुरली की शुरुआत यहाँ से है, याद में एकांत की जरूरत है। वहां आग भक्ति में काम क्रोध की आग, यहाँ शीतलता, उधर साइंस, यहाँ साइलेंस। यहाँ खुशी की ताली सदैव बजती रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तब बाबा कहते हैं तो सदा सुख देते सुख लेते, एक है सुख देना एक है लेना, या कभी दुख देते दुख लेते, एक है दुख देना वो तो विकर्म में आ जाता है, और दूसरा दुख लेना वो किस में आता है, वो विकर्म है। दुख दे रहे हैं आपको, हाँ, भाग्य, अवज्ञा। अच्छा बरोबर, राइट वर्ड, अवज्ञा है। बाबा ने तो आज्ञा की है तुम्हें सदा खुश रहना, परंतु हम दुख ले रहे हैं। एक दूसरे दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो ऐसा भी है कि दुखी होने में बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि सुख तो हमारा स्वभाव है, आनंद तो हमारा स्वभाव है, पर दुख में बड़ा श्रम है, तपश्चर्या है, कुछ तो करना पड़ता है। सुख में स्थित होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सुख हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है, परंतु दुखी होने के लिए जीवन में बहुत मशक्कत, बहुत श्रम है, बहुत मेहनत है, तपश्चर्या है, कुछ करना पड़ता है, झगड़ा कुछ तो करना पड़ता है, तब आत्मा दुखी रहती है। दुख के लिए ताक में रहते हैं कि कौन है वो जो मुझे दुख दे सकता है, फिर उसके पास जाना, चिंतन करना पड़ता है, रात रात गुजारनी पड़ती है। उसने एक वाक्य कहा, जैसे ज्ञान का चिंतन होता नहीं है ना, किसी को कहो ज्ञान का चिंतन करो, बोलते चलता नहीं, बुद्धि चलती नहीं, ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी चिंतन करने को कहो तो ब्लैंक। पर सुबह सुबह किसी ने कुछ कह दिया, ऑटोमेटिक ऐसी चिंतन शक्ति, मतलब एक इधर ज्ञान के 5 पॉइंट नहीं लिख सकते, वहां तो मजा नहीं, बड़ी बड़ी किताबें भर जाएगी अगर लिखना चालू कर देते, सार का विस्तार हो जाता है, कितना चिंतन, इसने ऐसा क्यों कहा होगा, अच्छा मुझे क्यों कहा, क्या मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी कहा, जरूर इसको किसी ने कहा होगा, इसके मन में मेरे बारे में है क्या, आखिर हमेशा ही ऐसा करता है क्या, पूर्व क्या कहते हैं उसमें पूर्वाग्रह क्या बायस है मेरे मन इसके मन में, क्यों हमेशा ही ऐसा करता है, कितना चिंतन, बिल्कुल विस्तार, और उसके लिए कितनी गहराई में चला जाता है व्यक्ति, चिंतन करते करते इतना डीप साइलेंस में चला जाता है, योग में भी वो चिंतन करता है, अभी योग में बैठा है फिर भी एकदम जितना शांत मन होगा और चिंतन होगा वो उतना ही अंतर मन में समा जाएगा, तो वही तो काम करता है व्यक्ति। 10 लोगों ने सुख दिया, उसका कोई चिंतन ही नहीं, उसकी याद भी नहीं, बस एक ने आगे कुछ कह दिया, उसका दिन रात चिंतन, रात भर चिंतन, रात को सोते 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 चिंतन करते करते जब आत्मा सोती है तो अंतर मन में सबकॉन्शियस में जाता है, उठती है तो योग में भी बाबा से फिर पूछते उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना मतलब गहराई में चले जाती है आत्मा। कौन सी आत्मा जो कहती है कि मेरा तो चिंतन होता ही नहीं, वो आत्मा जिसको तो भाषा का भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसका भी बड़ा गहरा चिंतन होता है, क्लास करा सकता है उसके ऊपर अगर कोई मिल गया। आज का अनुभव ने वरदान में एक को दूसरा तीसरे से ये माला बन जाती है, जैसे व्यर्थ की एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तो व्यर्थ की एक बहुत बड़ी माला,
आगे बताना नहीं
दुख लेना इसमें बहुत पुरुषार्थ है। सुख स्वरूप तो हमारा स्वभाव है, ये भी मनुष्य का विचित्र स्वभाव है, उसे न मालूम दुखों से क्या प्रीत है, बहुत प्यार है पीड़ा से दुख से, कि उसको मिलते वो छोड़ता नहीं है, उसे रखता है समाकर संजो के, बहुत ही सुरक्षित रखता है ताकि 10 साल के बाद भी याद आए, वो सामने व्यक्ति आ जाए तो याद आता है कि यही था वो, इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, वो तो भूल गया वो कहने वाला, हमने पहले इसने मेरा यहाँ ऐसा अपमान किया था, गलत व्यवहार किया था, ये बहुत छप जाता है। तो बाबा कहते हैं वो भी अवज्ञा है, बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा ने क्या कहा है, बाबा कह रहे तुम संसार की सबसे महान आत्मा हो, दूसरा कह रहा हो तुमको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं आता, वैसा भी नहीं आता, क्या किया सेंटर में, यही सीख के आए क्या, मधुबन में कोई सेवाधारी आ गया और उससे कोई गलती हो गई और किसी ने कह दिया, बस ऐसे ही करने आए थे, यही सिखाया तुमको सेंटर पर, बस बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, फोटो में कोई वो भूल गया, और उसने क्या कहा तुमको कुछ नहीं आता, वो याद रह गया, लघुता इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो निर्माण तो बाबा कहते हैं दुख देते दुख लेते हो, चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना, कभी कभी फील होता है खराब लगता है, एक होता है एकदम दुख, एक होता है एकदम ही बहुत मतलब आंसू हो गए, एक है खराब लगना, एक है फील होना अंदर, फील होता है। फीलिंग प्रूफ, जो व्यक्ति जितना संवेदनशील है अध्यात्म के मार्ग में बहुत सारी फीलिंग्स और ये सब समाप्त करना होता है। फीलिंग प्रूफ बनना अर्थात तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, वो इधर ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि बार बार दुखी होता है। कुछ ना कोई ये मार्ग तो ऐसा है कि कोई शांति से बैठने थोड़ी देते, भगवान का कांटों का जंगल है, कांटे तो चुभाएंगे ही, परंतु वो कांटे हमको ऐसा महसूस हो कोई जैसे हमको जलाने के लिए चुभा रहे। अंतर की जो चेतना मूर्छित हो पड़ी है, अगर मार्ग में कांटा लगता भी है तो सोचो वो कांटा क्यों आया था। हम सो गए थे ना, हमको लगने लगा था ये संसार बहुत सुखदायी है, हमको लगने लगा था यहाँ सब बहुत सुख देते हैं, पर हमको यहाँ रहना ही नहीं है। कल पापा ने कहा है तुमको इस दुनिया में रहना नहीं है, विघ्न आए तो परवाह नहीं करो, मुरली में वाक्य था विघ्न आए, परंतु हम उस कांटा किसने रखा वो उसके बारे में चिंतन चल रहा, कौन था वो, कौन मेरा शत्रु है यहाँ। बजाय इसके कि कमरा खोलते ही सामने नींबू है उसका अच्छे से सोच के, अमृत ने दरवाजा खोला और सामने नींबू और थोड़ी सी हल्दी, तो सुशील भाई जाकर सोचेंगे कि जाते ही और योग पूरा होते ही क्लास के बाद अच्छा शरबत बनाएंगे, तो दूसरा कोई होगा तो सोचेगा कौन है किसने रखा। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा है तो सोचो कि ये पत्थर कोई सीढ़ी बनाने के लिए रखा हुआ है, इससे सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ो फास्ट, बजाय इसके कि सोचो किसने रखा, क्यों रखा, क्यों फेंका, मेरे ही मार्ग में क्यों। इंग्लिश में एक किताब है वाई मी, मैं ही क्यों, अच्छी किताब है किसी ने लिखी हुई है वाई मी, हर बार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूँ, मेरे साथ ही कुछ कुछ खराब क्यों होता है, वाई मी, व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है हमेशा वाई मी। तो जो भी बाधा है, जो भी विघ्न है, उसका यूज करो अपने फायदे के लिए, चाहे कुछ भी हो, अपना फायदा नहीं करना उससे कुछ भी हो, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त पेपर हो सकता है, ये इसकी विशेषता है, कभी भी और किसी भी वक्त, आधी रात को भी पेपर आ सकता है, इधर दिन में भी कभी भी आ सकता है, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी और किसी भी वक्त यहाँ परीक्षा हो सकती है। हमारा जो भी अब तक का ध्यान हमने अर्जित किया है उसकी कभी भी वो सरप्राइज टेस्ट हो सकती है उसकी, इसको सरप्राइज टेस्ट कहा जाता है, स्कूल्स में होता है ना, कभी भी कोई आ जाता है बाहर का एग्जामिनर और तुरंत पूछता है कि ये बच्चे के क्या हाल है इनका, इसको कितना आता है। तो यहाँ पर ये हमारा संपूर्ण विश्व ही हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, ये ग्लोब, और इस एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी वक्त कहीं पर भी हमारी परीक्षा हो सकती है किसी के भी द्वारा, तो हम उतने तैयार हैं, ठीक है ना आशीष भाई, कभी भी हो सकती है किसी के भी द्वारा, आधी रात को भी हो सकती है, देखने के लिए जितना पेशेंस है, क्रोध तो नहीं आता। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना, कभी अव्यक्त बाप दादा या साकार बाबा बात कर रहे थे कृष्ण की, कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, सबने उसको गीता का भगवान मान लिया है, तो ज्ञान की नदी बाहर बैठी भाजी में बैठी थी, कहा बाबा आपको फील हुआ क्या। हमेशा कहते हैं ना बाबा इसने इसका नाम डाल दिया, गीता का ज्ञान तो मैंने दिया पर नाम इसका डाल दिया, लोग उसकी महिमा करते, वो गीता का ज्ञान दाता नहीं हूँ मैं हूँ। तो दादी ने पूछा बाबा आपको फील हुआ क्या, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना फील, क्योंकि वो फीलिंग बहुत ही सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि वो एकदम अंदर रहती है, ऊपर से ज्ञान योग धारणा क्लासेस चिंतन मनन सब चल रहा है, परंतु वो फीलिंग है और वो याद भी है, स्मरण भी है कि इसने दिया था दुख, और उसको हम छुपा के रखते हैं अंदर ही अंदर, उसकी पालना करते हैं। पालना कैसे, रोज उसको याद करो तो वो पानी डालना है, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, उसको याद करते हैं, उसको बाहर लाते हैं, या उसी को आधार बनाते हैं उस व्यक्ति या वस्तु से दूर जाने का या किनारे करने का, परंतु वो दबाव है, वो दमन है, रूपांतरण नहीं है। वो निकलेगा एक दिन, किस रूप में निकलेगा? घृणा के रूप में निकलेगा, क्योंकि दबा के रखा है। तो घृणा की भावना भी अगर दबा के रखी जाए, किसी ने दुख दिया वो स्मरण भी अगर दबा के रखा जाए, तो एक दिन बाहर निकलेगा जरूर। यो ऊपर से लगेगा वो तो डॉर्मेंट रहेगा, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में, पता भी नहीं चलेगा कि है, परंतु वो छिपा हुआ है, उसका अवसर की तलाश है। अवसर आते ही वो बाहर निकलेगा और सब हिला देगा, फिर पता चलेगा अरे कहाँ गया हमारा ज्ञान और योग और तपस्या, हम तो बहुत अच्छे चिंतन करते हैं। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। दुख देना तो हमने छोड़ दिया है देना, परंतु लेने का अभी भी चालू है, और बहुत बड़ा तपश्चर्या अंदर से हम करते हैं इसके लिए। तुरंत नहीं होता, इसको अर्जित किया जाता है, दुख दुख को अर्जित किया जाता है। सुख तो हम है ही सुख स्वरूप, पर दुख के लिए मेहनत है। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है। उसके लिए अंदर उतना शक्तिशाली चिंतन चाहिए कि कोई दे रहा है परंतु उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। जिसके पास होगा ही दुख वो क्या देगा? अभी है दूसरा पक्ष दुख देने वाले का। जिसके पास दुख है, अब ये व्यक्ति दुखी हो गया है तो वो भी दूसरों को सुख नहीं दे सकता, या फिर जो पहले से दुखी है वही दुख देगा। दुख ही देगा ना, लेकिन आपका काम है सुख लेना और दुख सुख देना। सुख देना तो ठीक है, परंतु सुख लेना भी एक पुरुषार्थ है। दूसरे दुख दे रहे हैं और हम सुख ले रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? वो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं हमारे मार्ग में, परंतु हम हर बाधा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। वो दुख दे रहे हैं, हम सुख ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो विघ्न डाल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए सब हो रहा है, हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। ये अनुभव से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, हम वो नहीं रहेंगे, हमारे माइंड का थोड़ी शक्ति बढ़ जाएगी ये इस अनुभव से थ्रू पास करने के बाद। ये इस तरह से सोचना है, ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है और कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करो, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये तो हमारे हाथ में। उसने दे दिया, बहुत खराब करा, बहुत बुरा करा, अपमान कर दिया, स्टेज पर अपमान कर दिया अगर किसी का सबके सामने, तो ऐसा लगे किसी ने कह दिया ये तो ऐसा ही है, इसको तो आता ही नहीं कुछ, हमेशा ही करता है ये। फिर तो लोगों को और यादें आ जाती है हमारी पुरानी गलतियों की। एक गलती की है तो वो तो कहते हैं ये हमेशा ही ऐसा करता है, हमने कभी किया भी नहीं, फिर भी कहेंगे हमेशा ही करता है। हाँ ये हम भूल जाते हैं, अगर कोई किसी का अपमान कर रहा है तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, हमको उसके अपमान की इतनी चिंता नहीं है जितनी लोगों की चिंता है, भीड़ की चिंता है कि ये सबके सामने हुआ। अगर ये अकेले कमरे में होता तो इतना बुरा नहीं लगता, परंतु देखने वाले ये भी तो देख रहे हैं कि जिसका अपमान किया जा रहा है वो कितना शांत है। देखने वाले ये भी तो देख रहे हैं उसमें कितनी पावर है सहन शक्ति की। देखने वाले ये भी देख रहे भले गलती है उसके बाद में भी उसका रिएक्शन देखो कैसा है। और देखने वाले ये भी देख रहे हैं कि गलती तो छोटी सी सी थी, परंतु जितना डांटा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, वो आप वहां पर सोल पावर को हिट कर रहे हो। उस आत्मा को जो अपमान कर रहा है वो गलती को सुधारने के बजाय ही इज हिटिंग द सोल, उसको जैसे कि नीचे गिरा रहा है। ये तो अभिमान दिख रहा है इधर, विकार दिख रहा है इधर, भले वो गलती होगी फिर भी जो चिल्ला रहा है उसके अंदर अहंकार दिख रहा है सबको। तो बहुत कुछ देखते हैं देखने में, हम जो सोचते हैं कि दुनिया ऐसा देख रही है ऐसा नहीं देखते वो, क्योंकि बैठे वाले भी तो ज्ञानी है बहुत सारे ब्राह्मण परिवार में। तो चेक करो, क्या चेक करना है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मैं क्या लू और क्या नहीं लू ये मेरे हाथ में है, उसको जो देना है दे, परंतु मेरी स्थिति सदा सुख स्वरूप स्थिति में रहना ये बाबा की आज्ञा है, इसको आज्ञा ले लो। और दुखी न होना ये परमात्मा आज्ञा है। अगर दुखी हो रहे तो अवज्ञा हो गई हो, अज्ञालंबन हो गया है वो। लेने में भी होशियारी चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए, क्या लेना क्या नहीं। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुखदेव, तो सुख स्वरूप सुखदेव आत्मा है वो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, ये अभी तक एक पाव दुखधाम में है, एक पाव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई, पाव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई। जब दुखधाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। देना तो बंद कर दिया है, लेने की प्रोसेस में भी चलू है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, डबल विदेशी भी है, कहां से भी हो लेकिन एक के हो, एक के है और एक है। सब क्या है, ब्राह्मण आत्माएं है। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हो, लेकिन याद क्या रहता है, हम एक के है और सब एक ब्राह्मण आत्माएं है। इतनी खुशी रहती है जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो, कितनी खुशी होती है। कल भी कहा ना, ये नाता कैसा है, बहुत ऊंच। ब्राह्मणों का आपस का जो नाता है बहुत ऊंच नाता है, सब श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। और खुशी भी अविनाशी खुशी है, ये खुशी अविनाशी है। संसार में जो खुशी है वो विनाशी खुशी है, अल्पकाल की जो भी खुशी है वो एक्चुअली खुशी है ही नहीं। जैसे कोई हमारा मित्र आ जाता है और हमको गले मिलता है, आलिंगन करता है, तो उसमें एक रस है, खुशी है क्षणिक। परंतु यदि वो व्यक्ति 15 मिनट तक गले लगे रहे तो अच्छा ठीक है, आधा घंटा तक गले लगे रहे तो, या एक घंटे तक, तो आलिंगन में रस आता है ना लोगों को, चाहे वो पुरुष पुरुष का है, स्त्री और पुरुष का कोई भी हो, उसके लिए लालायित रहती है आत्माएं, उसमें वासनाएं है। परंतु यदि कोई एक घंटे तक ही पकड़ा रहे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, फिर ऐसे लगेगा ये आलिंगन ये तो क्या है, ओ, नहीं बंदा बंदा ऐसा लगेगा। संसार के जो सुख है वो क्षणिक सुख है, और क्षणिक सुख जो होते हैं वो तुरंत, वो कल्पित सुख है, इमेजिनरी हैप्पीनेस है, उसमें क्षणिक सुख मिलता है, परंतु तुरंत ही वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। और जो सुख है वो तो सदा है, उसमें आलिंगन करने की जरूरत नहीं है। वो जो सुख है शरीर के संपर्क से प्राप्त हुआ, उसमें सुख है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, है, परंतु तो थोड़े समय के बाद में समाप्त होने वाला है और दुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी यादें रह जाती है, फिर वो मिलता नहीं है, फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर उसके लिए बहुत कुछ अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए, और वो चुप एक छाप छोड़ के चले जाता है अंदर ही अंदर, और वो तड़पाता है, एक बेचैनी उत्पन्न करता है हृदय में। तो वो ये किस प्रकार का सुख है, परंतु सारा दुनिया इसी सुख के पीछे, यही चाहिए है क्षणिक पर चाहिए वही। परंतु जो सुख है एक्चुअल सुख, रियल वास्तविक सुख जो है वो आत्मा का स्वरूप है, उसे ये सब किसी बाहर की किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं है, निर्भर नहीं है, उसको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो तो है ही हमारा स्वरूप और वो सदा है। उसमें कोई बेचैनी नहीं है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वभाव है, उसमें मेहनत है, पुरुषार्थ है, अर्जित करना पड़ता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब वो प्राप्त होता है, वो भी थोड़े समय के लिए, और फिर तुरंत ही नष्ट हो जाता है, कल्पित सुख उसको कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं और खुशी भी अविनाशी खुशी, ये शब्द मूल्यों में हमेशा आते हैं अविनाशी, पर हम इतना गहराई से इसके ऊपर सोचते नहीं है कि हमारी खुशी अविनाशी है। क्यों अविनाशी है, अविनाशी है तो क्या इसके फायदे है, संसार की खुशी विनाशी है तो क्यों है, इसके ऊपर चिंतन करना। क्योंकि अपना खजाना है ना, तो अपना खजाना साथ रखेंगे या अलग कर देंगे, तो सभी उड़ते चलो और उड़ाते चलो, समझा, अभी उड़ना है, चलना नहीं है, बहुत चल लिए, अभी उड़ना है। वर्तमान और भविष्य में कभी पूछते तो नहीं हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, परिस्थिति अफचना है और स्वस्थिति अफचता है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा, पहाड़ से टकराव नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, हम ऊपर उठ जाए, वो चाहे 100 पहाड़ हो, 100 हिमालय हो, छोटे हो जाएंगे। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ। फिर परिस्थिति क्या लगेगी? खेल, खिलौना, खिलौना लगेगी बाबा। क्या भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये था ग्रुप नंबर 2। देखो बाबा, एक एक ग्रुप से जो बात कर रहे हैं वो एक एक कितना सार गर्भित है, कितना शक्तिशाली। एक एक ग्रुप से की हुई बाबा का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, उसमें कितना रस है, कितना गहरा ज्ञान भरा पड़ा है। इतना गहरा ज्ञान देने के बाद अभी जरूर, अभी इसके लिए तो कुछ करता नहीं, हो गया उसका सब ज्ञान देकर। लोग कहते ना, क्या वही वही बात मेरा बाबा, वाह बाबा वाह, अभी और क्या देगा। इतनी जब गहरी गहरी बातें एक एक ग्रुप से मिलते हुए उसने कह दी है कि जिसके एक एक वाक्य पर सारा दिन भर भी चिंतन करो तो कम है। इतनी गहरी बातें है। देखो तो क्या सुना, हम सब फोटो में कोई आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा महान आत्माओं की निशानी क्या है? निर्माण। जो जितना निर्माण होगा वो उतना ही दूसरों को मान देगा, उतना ही दूसरों को सुख देगा। फिर बाबा ने कहा, सुख दो और सुख लो, इसके विपरीत क्या नहीं करना है। दुख ना देना है ना दुख लेना है। दुख देना तो ठीक, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है दुख नहीं लेना, पेन को एब्जॉर्ब नहीं करना। शिवानी बहन कहते हैं ना, पेन एब्जॉर्ब। सो जैसे कोई ये होता है ना, क्या होता है, स्पंज, स्पंज होता है ना, उसको पानी में रखो कैसे खींचता है, वैसे आत्मा का जैसे स्वभाव हो गया, वो दुख और पीड़ा और दर्द और वेदना को एब्जॉर्ब कर दिया। हमें बनना है उस कंचे की तरह। कंचा पता है ना, जो बच्चे खेलते हैं, पानी में रख दो पानी जाता है उसमें, रात में रखो सुबह देखो तो वैसे ही, स्पंज रख दो तो सुबह एकदम गीला गीला, स्पंज की तरह नहीं, भारी, बहुत भारी हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। तो कंचा जैसा होता है ना, अप्रभावित, पानी में रखो पर पानी उसमें नहीं। नाव हमारी इस संसार में, हमारे पाव पर पाव भीगे ना पानी में, हम पानी में पाव रखे पर पाव पानी हमारे पाव को ना लगे, उससे निकलते ऐसा लगे कि जैसे थे ही नहीं पानी में। कमल फूल समान कमल व्रत। तो दुख क्या लेना क्या नहीं लेना, इसकी चेकिंग करो। क्या कहा, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, सारा पुरुषार्थ इसी के ऊपर करना है कि हमको दुख नहीं लेना है, चाहे कोई कुछ भी करे देने दो, परंतु हम दुखी नहीं होंगे, प्रतिज्ञा करके रखे, दृढ़ प्रतिज्ञा। फिर आगे क्या कहा, हाँ दुख तो हमको छोड़ दिया है, तो ऐसा भी नहीं कि एक पाव उधर एक पाव उधर, ऐसे चलो पाव तो नहीं पर उंगली जरूर है, पाव हटा दिया, एक नहीं है एक नहीं है, पर वो नहीं है वो हाथ लगा के रखा है। दुख की लहर, दुख के छींटे, दुख की परछाई, छाया, ध्वनि प्रतिध्वनि, कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे झोंके हवाएं फिजाए कुछ नहीं होनी चाहिए। जस्तजु, जस्तजु मतलब खोज, अन्वेषण, खोज करना, अन्वेषण करना, सर्च करना, प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट, खोजबीन, छानबीन, ये सब करना। फिर बाबा ने क्या कहा आगे, ये दूसरा जो ग्रुप है, वैरायटी ग्रुप है, कि खुशी हमारी कैसी है, अविनाशी खुशी, जिसका कभी नाश ना हो ऐसी खुशी। और लास्ट में क्या कहा, परिस्थिति के बारे में, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन हम पूर्ति कला में है तो परिस्थिति खिलौना है, तो खिलौने से देखकर डरा नहीं जाता है, खेला जाता है खिलौने के साथ, अच्छी परिस्थिति है, वाह कितना अच्छा अपमान किया, बहुत बढ़िया। ओम शांति।